शाम लगभग 7 बजे निक की एम्बुलेंस कैंप के बाहर पहुंची। जिनी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थीं। एम्बुलेंस के आते ही जिनी ने स्टूडेंट्स को इशारा किया। स्टूडेंट्स एम्बुलेंस के पास पहुंचे और निक का स्ट्रेचर निकालकर उसे बाहर ले आए। स्ट्रेचर जिनी के पास पहुंचा तो निक ने जिनी की ओर देखा और जिनी ने निक की ओर देखा। जिनी निक को देखते हुए बोली, तुझे बहुत शौक है ना लड़ने का, अब देखो तुम्हारी यहाँ कितने अच्छे से खातिरदारी होती है, और लड़ो मुझसे। फिर उन्होंने मुक्का निक के कंधे पर मारा जहाँ हल्का प्लास्टर लगा हुआ था। निक चिल्लाता हुआ बोला, आह, ये मुझे कहाँ बेरहमों के पास भेज दिया, ये तो हालत का और कबाड़ा कर देंगे। जिनी ने ये सुनकर दोबारा उसके कंधे पर मुक्का मारा। निक हंसने लगा, जिसके बाद जिनी ने स्टूडेंट्स को उसे अंदर ले जाने के लिए कह दिया। निक जिनी के कमरे में पहुंचा तो उसने अपने स्ट्रेचर पर लेटे लेटे प्रियल की ओर देखा। उसे देखते ही एक बार के लिए उसके चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया, मगर वो मरीजों की तरह और बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, तो इस सन्नाटे ने उसे अंदर से परेशान नहीं किया। उसे ग्लूकोज भी लग रहा था। जिनी वहां आई तो निक ने पूछा, इसे क्या हुआ है? दिनी ने असरबात ने अमत आते हुए कहा, थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, बस इसीलिए। निक ने प्रियल को टेढ़ी नजरों से देखा और फिर जिनी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कमजोर लोगों को रखते ही क्यों हो, इन्हें देश की सेवा करनी है, हम इनकी नहीं। जिनी ने पलटवार करते हुए कहा, हाँ तो मैं यहाँ रह रहे सभी मरीजों को बाहर फेंकवा देती हूँ। शुरुआत तो तुमसे करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा पाने की जरूरत तो तुम्हें ही है। इसके बाद उन्होंने दोबारा मुक्का उसके कंधे पर मार दिया। फिर वे आगे गई और स्टूडेंट्स की मदद से उसे बेड पर लेटा दिया। रात लगभग 10 बज रहे थे। जिन्हें निक को खाना खिला रही थी, उन्होंने निक से पूछा, ये सब हुआ कैसे, तुम तो हर चीज का ध्यान रखते हो। निक खाना खाता हुआ बोला, मत ही पूछो, आजकल कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान मेरे काम पर नहीं लग रहा। मैं समझ सकती हूँ, जिनी ने कहा। इसके बाद वे बोली, और मुझे कल के लिए माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। निक ने उनकी तरफ देखा और कहा, गलती मेरी भी थी, हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, मगर इसके बावजूद मैंने तुम पर गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो क्यों करते हो? मुझे नहीं पता, निक ने लाइन को लंबा खींचते हुए कहा। तुम्हें पता है मेरे साथ जो भी होता है अपने आप होता है, मैं कुछ भी खुद से करने की कोशिश नहीं करता, मेरा मेरे किसी भी इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा भी आता है तो एकदम से आता है, नाराज भी होता हूँ तो एकदम से होता हूँ, कई बार तो मेरे पास दोनों के लिए ही वजह नहीं होती, पर मैं दोनों ही हो जाता हूँ। मैं अभी कहूँ, अगर मैं तुम्हें ना जानती होती तो पक्का तुम्हें पागल कहती। निक ने नकली हंसी वाला ड्रामा किया, अच्छा मजाक था। जिनी ने निक को खाना खिलाया और फिर अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली, चलो अब तुम रात भर यहाँ आराम करना, मैं चलती हूँ किसी और कमरे में सोने के लिए। उन्होंने ये कहा तो निक ने पहले उनकी तरफ देखा और फिर प्रियल की तरफ। इसके बाद उसने कहा, क्या मतलब तुम चलती हो सोने के लिए, तुम यहाँ नहीं सोने वाली, यहाँ बस दो ही बेड हैं, एक पर प्रियल है और एक पर तुम, मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? तो मैं कैसे? निक को जिनी ने ऐसा पहली बार करते हुए देखा था। वो एक तरह से शर्मा रहा था, अंदर से हिचक भी रहा था। पिछले 7 सालों के बाद ऐसा आज हुआ था। ये देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे मुस्कुराई और फिर सामान्य होते हुए बोली, तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? फिक्र तो इस लड़की को करनी चाहिए, लड़के कभी इस बात की फिक्र नहीं करते उसके पास कौन सो रहा है कौन नहीं। अब तुम चुपचाप लेटो और आराम करो। उन्होंने निक को पीछे किया और उसे दूर से ही बेड पर लिटाकर बाहर की ओर चली गई। उनके जाने के बाद निक बोला, अजीब मुसीबत है यार। अभी सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे और जिनी के कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा हुआ था। निक की आंख खुली थी और वो अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ रहा था। उसकी आंख ऊपर छत की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर तक छत की ओर देखने के बाद उसने अपना चेहरा टेढ़ा किया और प्रियल की तरफ देखा। प्रियल की तरफ देखते ही उसने अपना मुंह तेजी से घुमा लिया और वापस छत की तरफ देखने लगा। वो दोबारा काफी देर तक छत की ओर देखता रहा। इसके बाद उसने फिर से अपना मुंह हल्का सा प्रियल की तरफ किया और उसे एक नजर देखा। उसे देखने के बाद उसने फिर से अपना मुंह तेजी से घुमाया और छत की तरफ देखने लगा। उसने थोड़ी देर छत की तरफ देखा और फिर पूरा का पूरा घूमकर दूसरी तरफ ही पलट गया। दूसरी तरफ पलटने के बाद उसने अपनी आंख बंद कर ली और सो गया। रात लगभग 2 बज रहे थे। प्रियल की आंख सर के घूमने से खुली। उसकी ग्लूकोज वाली ड्रिप लगभग 8 बजे ही हटा दी गई थी, पर सुई अभी भी लगी हुई थी। उसने पहले अपना सर संभाला और फिर अपनी हालत देखी। अपनी हालत देखने के बाद उसने एक छोटी सी अंगड़ाई ली और बेड पर उठकर बैठ गई। उठकर बैठने के बाद उसने अपने दाईं ओर देखा, जहां निक पूरी तरह से कंबल में कवर होकर सोया हुआ था। उसके कंबल में सोने की वजह से ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो निक है। प्रियल का सर अभी भी घूम रहा था और उसे भारी भूख लग रही थी। भूख इतनी ज्यादा थी कि वो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। उसने लगभग पिछले 30 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था।
फिर वो निक को लेकर भी सोच रही थी, जिसके बाद भूख लगने के बावजूद उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। वो खड़ी हुई और धीमे कदमों से दीवार का सहारा लेते हुए निक के बेड के पास पहुंची। वो उसे जिनी समझ रही थी। हे, करीब पहुंचकर उसने कहा, क्या तुम जाग रही हो? मुझे पता है मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निक को जिनी समझ कर झकझोरते हुए पूछा, वो ठीक तो है ना? झकझोरने की वजह से निक की आँख खुली और उसने कंबल हटाते हुए पलट कर पीछे की ओर देखा। प्रियल ने निक को देखा तो उसकी सांस हल्की आ गई। निक ने थोड़े रूड और थोड़े एटीट्यूड वाले अंदाज में कहा, तुझे इतनी रात को क्या चाहिए? नींद नहीं आ रही क्या तुझे? वो प्रियल के गले से फटी हुई आवाज निकली। वो अंदर से इतना घबरा गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उसने गला साफ किया मगर हल्के से खांसकर, वो मैं सॉरी, मुझे लगा यहाँ जीनी है, मैं सॉरी। वो इतना कहकर फौरन तेजी से पीछे हटी और अपने बेड पर जाकर कंबल लेकर लेट गई। उसने अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर दिया था। इन सब से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लेटने के बाद उसने अपनी आँख कसकर बंद कर ली थी। निक कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, इसके बाद मुंह भी पहले की तरह हुआ और सोने की कोशिश की। उसने थोड़ी देर कोशिश की मगर इसके बाद अपना कंबल हटाया और बोला, तुझे जिनी से क्या चाहिए था? इतनी रात को तुम उसे क्यों जगा रही थी? प्रियल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अब उसे कैसे बताएं कि उसे जिनी से उसका ही हाल जानना था। वो धीरे से पलटी और निक की तरफ देखते हुए हल्की और मासूम सी आवाज में कहा, जहां उसने कंबल गर्दन तक अपने सीने से लगा रखा था, वो मुझे भूख लग रही थी तो खाना खाना था। इन हालातों में उसे खुद को जोरों से लगने वाली भूख को आगे करना बेहतर लगा। क्यों? निक उसकी तरफ पलटा और लेटे लेटे पूछा। निक प्रियल की तरफ आराम से देख रहा था मगर प्रियल ने अपनी नजर उस पर से हटा ली थी। वो उसे देख पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो मैंने कल से कुछ खाया नहीं, इसीलिए, प्रियल अपने मासूम वाले अंदाज में ही बोली। और खाया क्यों नहीं? निक ने उसे पूछा। प्रियल दोबारा से अलग मुसीबत में फंस गई। उसने सोचा और कहा, एक्चुअली मेरा फास्ट था इसीलिए।
तुम तुम्हारे फास्ट के चक्कर में हमारे इंस्टीट्यूट की ऐसी की तैसी कर दोगी। पहली बात, ऐसी हालत में तुम्हारे इंस्टीट्यूट में आने का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम वहां आ भी गई तो अपना ये फास्ट फास्ट वाला चक्कर छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आगे कोई एनिमी खड़ा हो और तुम बेहोश होकर उसके सामने गिर जाओ। प्रियल ने चुपचाप बिना कुछ कहे कह दिया। निक ने सुना और दूसरी तरफ मुंह कर सोने की कोशिश की। प्रियल ने भी उसके मुंह दूसरी तरफ करने के बाद अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। निक थोड़ी ही देर बाद वापस घूमा। सुनो, वो बोला। प्रियल ये सुनते ही दूसरी तरफ घूम गई। हाँ, वो बोली। तुझे ज्यादा भूख लगी है? निक ने पूछा। हाँ, प्रियल ने हाँ में सिर भी हिला दिया। अभी खाना खाना है? इतनी रात को? प्रियल कमरे में इधर उधर देखने लगी। हाँ, इतनी रात को, निक बोला और अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश की। अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे खाने के लिए मैं इस रात को दिन में बदलूं? वो खड़ा हुआ तो उसे कंधे पर हल्का दर्द फील हुआ। आ, वो दर्द के कारण चिल्लाया। प्रियल ये देखते ही अपने बेड पर खड़ी हो गई और फौरन उसके पास पहुंची। आप ठीक तो है ना? उसने उसके पास जाते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। निक ने हाथ ऊपर कर उसे दूर ही रहने का इशारा किया। मुझे सिर्फ कंधे पर चोट लगी है, एनेस्थीसिया की वजह से कमजोरी है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की, जहां एक बार के लिए वो लड़खड़ाया। प्रियल ने मदद करने की कोशिश की तो उसने दोबारा हाथ ऊपर कर उसे दूर रहने के लिए कह दिया। निक हल्का लंगड़ाते हुए कैंप के ग्राउंड में चल रहा था। प्रियल उसके पीछे उसे 2 फीट की दूरी पर थी। उसने अपने हाथों को बाजू में ले रखा था और चेहरा बिल्कुल नीचे कर रखा था। निक कैंप के किचन में गया और उसका दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उसने प्रियल को कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। प्रियल ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और बेंच पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद निक उसके लिए 4 ऑमलेट बनाकर लाया। उसने उसकी ओर लंगड़ा कर आते हुए पूछा, तुम अंडे वगैरह खा लेती हो ना? प्रियल ने ना में सिर हिला दिया। निक वहीं रुक गया और उसकी तरफ मोटी मोटी आंखों से देखने लगा। वो उसके टेबल के पास ही खड़ा था। उसने प्लेट टेबल पर रखी और उसे उसकी ओर खिसका दिया। तुम आज यही खाओगी, अंडे ना सिर्फ तेजी से भूख मिटाते हैं बल्कि ये हमें प्रोटीन भी देते हैं, जिसकी जरूरत एक एथलीट होने के नाते हमें सबसे ज्यादा होती है। प्रियल ने हाँ में सिर हिला दिया और प्लेट अपनी ओर कर उसे खाने लगी। वो उसे चुपचाप ऐसे खा रही थी जैसे निक उसे यहाँ खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि किडनैप करके लाया हो, जिसमें अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो उसे जान से मार देगा। निक उसके ठीक सामने बैठ गया और उसे खाना खाते हुए देखने लगा। ऑमलेट एली की फेवरेट डिश थी और उसने उसे भी वही बना कर दिए थे। क्यों? इसकी वजह वो खुद भी नहीं जानता था।